नमो महाबंधनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनम गौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेशगोपिका राधाकं सप्तकंकन गौरांगे राधे वृंदावनस्वरी प्रणमामि आदि कातुहर गजवाच्य जाते निकटभूतवतुभटे अच्छाधनस्वे ंगश्यामीरंतो मंदे कृतंगीवृंदारंगवासीनमो राधाकंदीनापराधल कामादितरंग मध्ये कृपा प्रपन्ना गौरचंद्राय राधिकाय कलाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजंतमनुतेतमतेतकृत्यं द्वैपायनो वियः कर्तव्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतैर्जनं मुनिमान् तवैवास्मि न दिनानि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां कृष्ण भक्त बोलिया यहाँ है ख्याति इसको हम लोगों ने प्रहलाद महाराज जी से आरंभ करके गोपियों तक लिए। इसमें सबसे अधिक ख्याति किसकी है? गोपियों इनके जो अनुगत हैं। ऐसा कोई यदि भक्त है तो वो सबसे उसमें भी कल दिखाया है जो रूपानुगत जो वैष्णव है वो कृति की अंतिम सीमा पर वो खड़े हैं। जो रूप को सामने चंद्र होकर के उस रूप से उनकी भावना को साथ से भजन करते हैं। अब थोड़ा सा ये हम लोग विचार करें, ध्रुव जी नारद जी से दीक्षा लेकर के उन्होंने साधन भजन किया और अंत में उनको विमान आया और विमान पर चढ़ करके अजामिल के संबंध में हम देखते हैं कि अजामिल कुकर्मी रहने पर भी भगवान नाम के प्रभाव से विष्णु दूतों का दर्शन पाया और अंत में मृत्यु से पार होकर बचकर और अंत में हरिद्वार चला गया और भजन करने के बाद में विमान आया वो भी बैठने के लिए। और ये तीसरे हैं प्रहलाद महाराज, इनके लिए कोई विमान विमान नहीं आया, वो विमान के ही बेचारे घर नहीं रह गए। तो ये भी उनके शिष्य नारदी। अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? बोलो तो कृष्णदास जी, इन तीनों में तुम किसको अधिक पसंद करता है? तीनों में श्रेष्ठ कौन है? वो बैकुंठ में गया, ये भी अपने ध्रुव लोक में चले गए, उनके लिए भी विमान है, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ये लोग चले गए। प्रहलाद महाराज जी वहां आप बतलाइए जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं जो कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने वैकुंठ भी नहीं लिया, मुक्ति कोई नहीं ली, इसलिए ये श्रेष्ठ। और इन्होंने कहा है हमारा जन्म हो किंतु गुरु और वैष्णव उनका संग मिले और गुरु के प्रति हमारी अगाध निष्ठा हो, गुरु जी की सेवा कर सके। इन लोगों में गुरु के प्रति कुछ देखा नहीं जाता, इनमें गुरु के प्रति निष्ठा भी देखा जाता है और जीवों के प्रति अपार कल्याण की कामना है। मैं यहाँ नरक भोग करूँ किंतु जीव जितने हैं वो तो समुक्त होकर के भगवान की सेवा करें, उदार हृदय है इनका।
भक्तजन भक्त के तारतम्य दिखाया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर जमा तो प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त लिया गया है। ध्रुव महाराज जी का ये किसी का नाम नहीं है, उनसे नीचे हैं,
इसलिए ये लोग ये सब विचार रखना होगा। नहीं तो कोई कुछ कहेगा आप लोग उत्तर नहीं दे सकते। कोई भी बात कहना है तो प्रमाणित कहना है, समाज बूझ करके कहना है।
नारायण
अवतार लेंगे जखन कृष्ण ओखन थी देखान हो वासुदेव कृष्ण रेखा प्रकाश और ओखन थी वैभव प्रकाश नारायण एवं महाशंकर नारायण बच्चे नोखांति के और एक बलदेव से देखाना हो उन्हीं को दिन आविर्भूत होना किंतु श्रेष्ठ तत्व और अवस्था बोला गई थी जरा अवतार नहीं थे उधर मध्य विचार करें ओखान मीना के बोला गया मीना के वही काय विधि इत्यादि मध्य देखाना हो कखनो कखनो गर्भोदय साइल अवतार बोला हुई थी यहाँ
नृसिंहदेव
को। कल दुख में तुम्हें बताया था सबसे दुख में कौन दुख भूलता है, कृष्ण भक्त बिना बिना दुख नहीं देता। क्यों? बिना सत्संग के भक्ति नहीं होती, बिना सत्संग के प्रेम नहीं होगा। भक्ति का मूल आधार भक्त लोग हैं, विशेष करके रागानुगा भक्ति में भक्त वैसा रसिक वैष्णव तत्वज्ञ इत्यादि नहीं होगा तो कभी भी रागानुगा भक्ति लोभमयी भक्ति कभी नहीं हो सकती। जिसका संग जितना उच्च कोटि है वो उतना ही उच्च कोटि का भक्त हो सकता है। इसलिए यदि ऐसे भक्त का संग ऐसे गुरु का संग, गुरु भी भक्त के अंतर्गत है, जितने भक्त हैं वो सब गुरु तत्व हैं, जितने भी भक्त हैं वैष्णव मात्र ही यदि उन्नत हैं वो गुरु तत्व, हमारे गुरु हों चाहे उनके गुरु हों, गुरु होने योग्य हैं इसलिए गुरु हैं, अधिकार है भले किसी को दें न दे वो दूसरे का। लोकनाथ गोस्वामी यदि केवल मात्र किसको दिया, यदि उनको शिष्य नहीं करते तो लोग देखते जैसे ये गुरु नहीं है, ऐसा ही ना कौन देखते जो तत्व ज्ञान ही है, क्योंकि जो तत्व ज्ञान वो क्या देखते नहीं गुरु। महाप्रभु जी ने किसी को शिष्य नहीं किया, हमारे रूप सनातन या और जिसने गोस्वामी है ये सब लोगों ने नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैष्णव मात्र ही गुरु है, गुरु तो गुरु ही है वैष्णव मात्र ही, इसलिए बिना उनके संग से कभी भी शुद्धा भक्ति प्रेमा भक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए वही एकमात्र जगत में हमारा अवलंबन है। बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के कुछ नहीं। किधर में गई तुलायाम लवे नापि
न सर्गम न
पुरभम
भगवत
संगी संगत
मर्तानाम साधुत।
मत्त लोगों के लिए साधु संग से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है, इसलिए ऐसे संग समरहित हो गए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए दुख में सबसे बड़ा दुख है वैष्णवों का संग छूट जाना ही सबसे संसार में दुख है, इससे बढ़कर के और दुख है। रुपया पैसा जन्म मरण भाई बंधु ये सब मिल सकते हैं, किंतु संतों का संग मिलना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए ये दुख का तात्म्य है, जैसे हम प्रहलाद महाराज जी से या ध्रुव जी से लिया और गोपी तक हम पहुंचे, तो वैसे गोपी भाव तक के जो भक्त हैं, अब उठाया हम नीचे ध्रुव जी से, ध्रुव जी का संग भी छूट जाए तो हमारे लिए दुख का विषय, किंतु प्रहलाद महाराज जी का संग छूट जाए तो और दुख है। उससे हनुमान जी का संग छूट जाए और दुख होगा, उनसे पांडवों का दुख संग छूट जाए पांडव जैसे भक्तों का तो और दुख होगा, उद्धव जी जैसे भक्तों का संग यदि छूट जाए तो और भी विषय बहुत दुख है। और गोपियों के आश्रित कोई यदि हो, रूप गोस्वामी के अनुगत कोई वैष्णव हो, रूपानुग वैष्णव हो, उनका संग छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी दुख है। किंतु अनुभूति कैसे होगी, कैसे अनुभूति होगी? एक पत्नी जिसका पति उसको बहुत प्यार करता था और उसके वजह से सब लोग उसको उस स्त्री को सम्मान करते हैं, और वो पति मर जाए, अब जब कोई नहीं सम्मान करता उसको और वो प्यार नहीं मिलता, संसार में जो सुख के साधन है वो सब उससे रहित हो जाते हैं, तो उसके लिए विलाप करके रोती है, अनुभूति से रोती है। किसी का एक लड़का है, अपना सारा जमीन जायदाद बेच करके उसे पढ़ाया लिखाया, वो मान लिया कि कोई बहुत बड़ा अफसर हुआ, और वो थोड़े दिनों के बाद में माता पिता के सामने ही मर गया, तो उसका दुख को अनुभव करेंगे कि नहीं? एकलौता लड़का, माता पिता का प्यारा, वो भी पिता को करता था और काम करने वाला हो गया, अभी पिछली साल शादी हुई और वो मर गया, तो किसका दुख अनुभव कौन करेगा? उसकी पत्नी करेगी, उसके लड़के करेंगे, उसकी मैया बाप और लोग परिवार की है, हम लोग नहीं अनुभूति करेंगे। इसी तरह से साधुओं का संग छूट जाने पर किसको विरह होगा, किसको दुख होगा? जो अनुभव करने वाले हैं, जैसे इन्होंने हमारा कल्याण कैसे किया, अनुभूति होगी। जिसको थोड़ी थोड़ी सी श्रद्धा हुई है वैष्णव के प्रति, वो थोड़ा थोड़ा अनुभव, जिसकी निष्ठा हो गई वो कुछ अधिक करेगा, जिसको रुचि हो गई उसे भी अधिक करेगा, जिसको आसक्ति हो गई बिना रह नहीं सकता, जिसके द्वारा वो उपकृत हुआ है, वो भाव तक पहुंचा, उसके लिए वो छटपट छटपट करे। महाप्रभु की कृपा से और स्वरूप दामोदर की कृपा से रघुनाथ जी वहां तक पहुंचे उस अवस्था पर। अब महाप्रभु और स्वरूप दामोदर के अप्रकट होने पर उनकी क्या दशा हुई, विरह में तड़पते तड़पते प्राण छोड़ने के लिए वृंदावन गया, गिरिराज गोवर्धन से कुछ करके मर जाएंगे, यमुना में डूब करके मर जाएंगे। इसी तरह रूप सनातन ने अपने प्रेम से उनको पाला पोसा, उसको बचाया। जब रूप सनातन दोनों चले गए तब उनकी क्या दशा होगी, तब वो कहते हैं इस श्लोक में, सुन न्याय से महा, ये वृंदा वन में कहते थे कि मैं राधा पंडित छोड़ करके नहीं जाऊंगा, भले ही विषयी का रोटी खाऊंगा, उनके साथ में विषयी लोगों से बातचीत करूंगा, किंतु राधा कुंड को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। खूब सत्संग वहां हो रहा है, लाख सत्संग कहीं हो रहा है, बड़े बड़े साधु हैं, सब कुछ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कितनी ऊंची अपार्टमेंट, किंतु जब वो चले गए तो उसी गोष्ठ के लिए कह रहे हैं राधा कुंडम तुंडाय, बाघ का मुख है राधा कुंड हमको निगलने जा रहा है, जिसको छूना नहीं चाहते। गिरिराज गोवर्धन जिसकी सब समय पूजा करते थे, और वो कैसे दिखते हैं उनको, जगत के समान देखने लगे। उनकी दृष्टि में गिरिराज जी का महत्व अधिक है न रूप गोस्वामी का महत्व अधिक है, रूप गोस्वामी का महत्व अधिक है, कनिष्ठ अधिकारी के लिए गिरिराज जी का महत्व अधिक है, किंतु ऐसे ऐसे महात्माओं के लिए जो बहुत ऊपर उठ गए हैं, भावावस्था माने ऊपर ही समझ लो, इन लोगों के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का महत्व है, इसलिए उनके अप्रकट होने पर ऐसी बात है। गोष्ठ ये सुनने लगता है और गिरिराज गोवर्धन अजगर के समान लगते हैं, और कुंड लगते हैं व्याघ्र का मुख निकलने के लिए, अब मुझे यहां नहीं रह जाता। जीवातु
रहित,
जीवातु उनके कौन है, प्राण उनके हैं, इसलिए प्राण समझने वाले भक्त लोग हैं ना, वो समझेंगे। हम लोग कभी गुरु वैष्णव ने क्या दिया, अभी तो लिया ही नहीं कुछ, जो लिया है वो तो अनुभव करेगा, यदि लिया है जितने परिमाण में अनुभूति का विषय है वो तो समझेंगे, और नहीं तो बाकी गुरु जी की महिमा हम लोग अब कुछ कुछ समझ रहे हैं, तो उनके लिए होता है जो यदि वो रहते तो हम बड़े सौभाग्य मानते हैं। हरि कथा सुनने को हम अभी सुना रहे हैं, हमारा ऐसा दुर्भाग्य कि हरि कथा सुनने में कोई नहीं सुनाता, सभी लोग हमसे सुनना चाहते हैं। आप लोगों का कितना सौभाग्य, कितने आदमी आप लोगों को सुनाने लायक, हम लोग अनुभव करते हैं। विशेष करके बहुत से आदमी ऐसे हैं कि दो एक आदमी को इसके लिए होगा, वैष्णवों के लिए, और नहीं तो अभी चंचल मती कहां भी द्वारका में जाने, वैष्णवों का आश्रम छोड़ करके द्वारका में जाने के लिए, इधर सोने के लिए, नवदीप छोड़ करके और दूसरी जगह जाने के लिए, इसलिए वैष्णवों को इसके प्रति वैष्णवों की कृपा जिसने रियलाइज किया है, अनुभूति की है, उन लोगों को दुख होगा, उनके लिए कह रहे हैं, भक्तों के लिए साधारण लोगों के लिए नहीं कह रहे। इसलिए दुख में सबसे बड़ा दुख है वैष्णवों का। मुक्त मध्य कौन जी, मुक्त खरी नहीं, मुक्त में कौन सा मुक्त श्रेष्ठ है, निताई बोलो तो, मुक्त है हनुमान जी भी मुक्त है, पांडव लोग भी मुक्त हैं, वो उद्धव जी भी मुक्त हैं, अयोध्या के परिकर भी मुक्त हैं, सभी लोग मुक्त हैं, किंतु मुक्ति कहते हैं किसको, कौन मुक्त सबसे श्रेष्ठ है। मान लिया जाए विष्णुआंग्री लाभ मुक्ति, विष्णु के चरण कमल को प्राप्त होना ही मुक्ति, मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम स्वस्वरूप व्यवस्थित, अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना, और जितने हमारे जागतिक स्वरूप हैं देह और मन का, इन सबको छोड़ करके अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, ये लिए है। और विश्वास में लाभ संसारी का शक्ति का छोड़ना भी ये मुक्ति है, छूटना। किंतु देखो अब इसी को लो, इसमें वो ध्रुव से ही अनुभव हुआ, आसक्ति छोड़ दी संसार की, माया से मुक्त हो गए, ये मुक्त हुए। प्रहलाद जी भी मुक्त हैं, अजामिल भी मुक्त हैं, ये सभी मुक्त हैं, जय विजय भी मुक्त हैं, वैकुंठ के जितने परिकर हैं वो सब मुक्त हैं और ये गोपियां भी मुक्त हैं। इसलिए ये कहते हैं कि कृष्ण प्रेम जाल से ही मुक्त शिरोमणि, मुक्तियों में शिरोमणि कौन है? जिनको कृष्ण। अब ये कृष्ण प्रेम शांत से लेकर के मधु तक ये सभी कृष्ण है, सभी कृष्ण प्रेम है। इसमें शांत वाला का प्रश्न प्रकट नहीं है और कम से दास्य भक्त उससे सख्य उससे बात्सल्य और उससे मधुर। तो इसको कृष्ण प्रेम माने जिनको मधुर रस का प्रेम जिस भक्त के अंदर में है वही भक्त सब कृष्ण प्रेम जात के ही मुक्त शिरो। अतः जिसको ऐसा प्रेम है उद्धव जी श्रेष्ठ है, पांडवों से श्रेष्ठ है। क्यों? कारण क्या? पांडवों से श्रेष्ठ हैं उद्धव जी। क्यों? ब्रज में इनका आना जाना है उद्धव का, किंतु पांडवों का ब्रज में आना जाना है। उनका द्वारकाधीश के प्रति निष्ठा है, अर्जुन इत्यादि समस्त पांडवों की, उनकी रुक्मिणी के प्रति निष्ठा नहीं है, रुक्मिणी का भी अनुगत्य नहीं है, वो स्वतंत्र रूप के सखा इत्यादि के रूप में वो उनकी सेवा करते हैं, किंतु ब्रज का भाव उनके अंदर में नहीं है। उद्धव में ब्रज का भाव नहीं है, किंतु आने जाने से कुछ ऊपर से वो थोड़ा सा लग गया। पानी तो नहीं है, किंतु पानी से स्नान करने से शरीर में पानी के बिंदु सब लगे। अर्थात ब्रज में गए, गोपियों को बहुत निकट से देखा परखा और बतलाया कि गोपियों का ही प्रेम संसार में सबसे श्रेष्ठ है, अर्जुन इत्यादि को उपलब्ध नहीं, इसलिए उद्धव जी। किंतु उद्धव से गोपियों का प्रेम, जो गोपी किंकरी है, किंकरी की किंकरी भी है या किंकर है, सखा है, सख है, ये अर्जुन से सबसे। इस अर्जुन को तो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ब्रज में अर्जुन नाम के उनके बड़े प्रिय सखा है, इसलिए इस अर्जुन को इतना प्यार करते हैं। इसलिए इस अर्जुन से भी उद्धव जी से और उद्धव जी से भी गोपियां खास कृष्ण की उस मधुर रस से सेवा करती हैं, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मुक्तों में वही सबसे श्रेष्ठ है, सब मुक्त है। सनातन भी तो सनत कुमार ये चार ऋषि लोग भी हैं और सब ऋषि महर्षि सब जितने हैं साधक हैं भक्त हैं सिद्ध हैं। उनमें से यदि रूप गोस्वामी की कोई किंकरी हो रूपमंजरी की, वो जीवों के लिए। इसलिए कृष्ण प्रेम जिसके अंदर में वही मुक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ है। गान मध्य कौन गान धीरे लिंग धर्म, बहुत प्रकार के गान हैं और बहुत प्रकार की राग रागनियां हैं। इन गानों में कौन सा श्रेष्ठ है? अभी कुछ दिन जबकि भारत स्वतंत्र होने जा रहा था तो यहां पर गाने करके आशु कवि लोग साथ साथ में जोड़ेंगे बनाएंगे गली गली में, वो अपना लेकर के बजाते हुए गान रचना करते हैं, राष्ट्र गान करते हैं, राष्ट्रीय गान,
राष्ट्रीय संगीत
और लोगों को झांसी की लड़ी किया रानी लड़ी बड़ी मर्दानी थी, मर्दानी थी इत्यादि और भगत सिंह इत्यादि का नाम लेकर के लोगों का हृदय एकदम होता है, लोगों को एकदम रुला देते थे, हंसा देते थे, हंसी को। ये भी एक गान है। और भी कितने तरह के गान हैं? कुछ गान हैं निर्गुण गान, जो अद्वैतवादी लोग मायावादी लोग संसार से वैराग्य लाने के लिए वैसे गानों को करते हैं, जैसे इनका एक गान है हमारे कबीरदास जी का, चार जन मिल करके एक बत्ती को उठाया, चार जन बड़े कपड़े से सुसज्जित करके उसको लेकर के फूल की मालाओं से उसे ला कर और लेकर के चल गए। कहाँ ले गए? अग्नि के घाट में ले गए और उनको लेकर के अग्नि के ऊपर में लेकर के अच्छी तरह से प्रेम से आग की लपटें उठी और आग की लपटों में वो समा करके न जाने कहां चले गए। बड़े वैराग्य से उन्होंने लिखा है, इसका भी एक गान है। कितने तरह के आजकल शास्त्रीय संगीत गया, सिनेमे के गान चल रहे हैं, इस तरह से कितने गाने, किंतु गानों में कौन से श्रेष्ठ गाना है? राधा कृष्ण प्रेम के भी जयी गीतेर मर्म, राधा कृष्ण संबंधी नहीं कहा, राधा कृष्ण की केली पीड़ाएं जो हैं और केली होगी केवल गोपियों के सहित में, उनकी जो निर्जन में रहने वाली जो गोपियों के साथ में जो पीड़ाएं हैं, जय किते अधिकम जन्म नाम, ये गान है। जैसे राधे जय जय मां भवतु गोकुल तारिणी मंडल महिते, राधे जय जय मां भवतु। उसके बाद में दामोदर रति वर्धन, ये केली कुंज है। रति कैसे वर्धन करती हैं, उनके प्रेम को कैसे बढ़ाती हैं? दामोदर रति वर्धन वेश, ऐसा उनका वेश ही है। क्यों? उनका प्रेम ही कृष्ण के प्रेम से बना हुआ, उनका प्रत्येक अंग प्रत्यंग महाभाव का है, इसे देख करके ही कृष्ण की प्रति बढ़ जाती है। करुणांग गुरुमयी करुणा पर सनक सनातन पर आप हमारे पर में कम, ये सब कीर्तन से जसमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान, ये सब कितने ये सब कीर्तनों में श्रेष्ठ कीर्तन है। कदम्ब कानन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जप राखो वचन मन, ये सब कीर्तन। जिन कीर्तनों में ये सब भाव होना, जिस राधा कृष्ण प्रेम के लिए जय गीतेर मर्म, जिसका गीतों का मर्म एकदम वही, तब तो वो कीर्तन हो सकते। किंतु केवल गाने से नहीं, ये झंकार हृदय से हो, यहां से उठे और उसको डुबा दे उसमें, ऐसा वो कीर्तन होना चाहिए। एक आदमी जुल्फी लगा करके, जुल्फी बाल काट करके बड़े फाट के साथ में वो सुंदर क्या कपड़े पहन रखे हैं, बहुत क्या फैशनेबल ढंग से, और वो कीर्तन करता है कि चार दिन में मिलो खाट उठाओ, वैराग्य की बात करता है, तो उसमें मुख से वो वैराग्य की बात सुबह पाएगी। एक महा बदमाश फटीचा फटीचर आदमी, गला जिसका ठीक है, राधा कृष्ण की एक केली का गान कर रहा है और बीचों में एकदम मर रहा है, एक दमड़ी के लिए एक फूटी कौड़ी का माँ बाप, और इतनी ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, तो उनके मुख से ये सब शोभा पाएगा ये गान नहीं? वो गान करना वाला भी वैसे उन्नत कोटि का व्यक्ति हो और गान भी उसका ऐसा हो, तब वो ठीक है। इसलिए जितने प्रकार के गान हैं, जियते इसी गान, क्या गियते? कृष्ण गियते, और उसमें जुगल गियते जाएगा तो और श्रेष्ठ हो जाएगा। जुगल गीयते, जुगल कृष्ण की लीलाओं का गान, जिस गान का उद्देश्य है वही गान सबसे श्रेष्ठ है। गायक भी वैसा होना चाहिए, सुखदेव के मुख से ऐसा सुंदर स्वभाव है, इनके मुख से नहीं हुआ, व्यास जी के मुख से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो तो राधा जी के सुख थे ना, बड़े प्रियदर्शी थे और प्रियभाषी थे, और कुछ जानते हैं उस विषय में, उनका लोभ है। ये तो शक्तिमान तत्व हैं व्यास जी, कृष्ण के अंश के परंपरा से वो शक्तिमान तत्व,
सत्ता भी होता है,
इसलिए ये प्रेम के आश्रय नहीं होंगे। यदि अपने स्वरूप को बदल दें, बलदेव जी जैसा अनंग मंजरी कर ले, तब तब पृथ्वी हो सकता है, अन्यथा इनके लिए संभव उस शरीर के द्वारा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज ने जो गान किया, यही सबसे गान श्रेष्ठ है, वही भागवतम भगवान के समान, उसमें इन सब चीज का वर्णन किया गया। बल्कि कुछ वैष्णव का विचार ऐसा है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने यद्यपि निगम कल्पतरु और गलितंग फलम इत्यादि कहा, और रासलीला भ्रमर गीत वेणुगीत इत्यादि को किया, किंतु केवल टच कर गए, कुछ अधिक नहीं कहा। और हमारे गोस्वामियों ने इससे हजार गुना उन्नत भाव को उसमें लेकर के दिखलाया। गोपियों को कृष्ण के लिए रुलाया सुखदेव गोस्वामी जी, किंतु स्वामिनी जी के लिए कृष्ण को नहीं रुलाया, ये गोस्वामियों ने देखा। इसलिए गोस्वामियों का जो गीत रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अप्राकृत ये कवि लोग हैं, रसिक कवि लोग हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, नरोत्तम ठाकुर हैं, ये सब जितने लोग हैं, ये सुंदर सुंदर गानों को रचना करने वाले हैं, इसलिए इनका गान उससे भी महत्व का है। इसलिए रूप उनके साधारण बंगला भाषा में भी नरोत्तम ठाकुर की पदावली विशेष करके प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़नी चाहिए, उसमें विद्या की भी अधिक जरूरत नहीं, ऐसे बैठे गानों का पढ़ना चाहिए। मीराबाई इत्यादि के पदों में है कि तू वो लालित्य और वो ऊंचा भाव नहीं है, तुलसी जी के चरण अत्यंत सुंदर है साधारण लोगों के, किंतु उसमें गोपियों के इस भावना का ये सब नहीं है। उन्होंने साधारण लोगों के लिए, कल्याण के लिए साधारण बातें तक ही उन्होंने लिखा है, आगे की बात रख दिया उन्होंने, दूसरे रसिक वैष्णव लिखे। श्रेय मध्य कौन से जीवर है ऐसा, कितना बजा? 6 बजा। अब संस्था अंधकार होता जा रहा है। श्रेय मध्य कौन से जीवर है श्रेय, और एक है श्रेय। श्रेय किसको कहते हैं, अप्रेय किसको कहते हैं? श्रेयश्च प्रेयश्च, इसके बाद अब कोई याद ही नहीं करता है। ये गौड़ीय कंठहार हमने सबको एक एक दिया था, लिख के दिया था, ये याद करना, याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तक याद, जिसकी प्रार्थना हम करते हैं और जो हमारे पास में नहीं है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो चीज है उसके रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनको कहते हैं प्रेय। प्रेय माने प्रार्थनी, रुपया पैसा धन दौलत और जो चीजें हैं संसारी, वो हमारे पास में नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करना, ये भी प्रेय है। और यदि है तो हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, उसकी रक्षा के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसको कहते हैं प्रिय। संसार के अधिकांश लोग माने 99% लोग ये प्रिय क्या प्रिय कहते हैं, आत्मकल्याण, ये शरीर संबंधी मन संबंधी ये सब प्रार्थना करते हैं। आत्मकल्याण व्यक्ति सोचने वाला, शरीर के लिए जो उपयोगी ये चीजें हैं धन पुत्र परिवार, इसको भगवत भक्ति का बाधक समझता है। वो क्या बतलाए हैं अर्थ के लिए,
निस्तार्थ
देन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना चले। कहते हैं कि ये धन ही त्रिकाल में हमारे अशांति का कारण है। धन नहीं है तभी अशांति, धन है तभी अशांति, धन चला गया तभी अशांति। त्रिकाल में उस धन से संग्रहित कोई भी वस्तु हो संसार में, वो सब अशांति का कारण जरूर होगा, भी नहीं समझते हैं। बड़े बड़े लोग भक्त लोग भी किसी किसी न किसी उपाय से धन संग्रह करते हैं, किंतु ये उनके लिए महान दुख का और चित्त चंचल का कारण बन जाता है। हम लोग अभी समर्थ नहीं है कि इसको भी हटा दें। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी समर्थ थे, इसलिए इनको दूर रखा सके। चिंतामणि मिल गई और उसको फेंक दिया। हम चिंतामणि फेंक देंगे, हम तो सोना भी नहीं फेंके, हम कहेंगे ठाकुर जी का अलंकार बनाएंगे। उन्होंने ठाकुर जी को भी छोड़ दिया, मन ने अपने ठाकुर जी को बसा दिया। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए अभी अनर्थ है। किंतु ये संदर्भ को अर्थ समझ, जब ऐसा होगा ना, आत्म कल्याण जब समझेगा, तो इन चीजों को हटा करके भगवान की भक्ति को ही अपने हृदय में केवल रखेगा भगवान को। इसलिए केवल मात्र भगवत भक्ति ही श्रेय, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम अनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्त। ज्ञान कर्म इत्यादि से अनाच्छादित, उसे स्पर्श नहीं, और संसारी कोई भी कामना वासना, वैकुंठीय भी कोई कामना वासना नहीं, यहां तक कि द्वारका तक की कोई भी कामना वासना उसमें न हो। ब्रज में भी केवल एक भाव रहे, तब वो जाकर के श्रेय में सबसे उन्नत श्रेय होगा, सबसे भक्ति। पहले बतलाया गया कर्म मिथ्या इत्यादि, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, फिर शुद्धा भक्ति, स्वरूप भक्ति। स्वरूप भक्ति में भी उत्तमा भक्ति बतलाया गया, उत्तमा में भी प्रेमा भक्ति बतलाया गया, प्रेमा भक्ति में भी चार प्रकार की दास सबसे बात कर ले इत्यादि। इस तरह से वो जो भक्ति है, भक्ति माने जब जगत में हम साधन करते हैं, सिद्धि होने पर उसको परिकर कहा जाता है, और जब तक इस जगत में रहता है साधन करता है तो उसको साधन भक्ति कहते हैं भावावस्था तक। इसलिए जगत में भाव भक्ति तक जिसको हो गया है भाव, कैसा भाव, भाव ही पांच प्रकार के, इन पांचों में सबसे श्रेष्ठ वो भाव है मधुर भाव। ऐसे भाव के प्रति जिसका भाव आकृष्ट हो गया है वो भक्त सबसे, और ऐसी भक्ति हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ श्रेय है, हमारा कल्याण करने वाली है। इसलिए कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आ, इस जगत में ये कैसे होगा। श्रेय भक्ति को भी नहीं बतलाया, किसको बतलाया, जिसके संग से ये भक्ति होती है ऐसा श्रेय, उन भक्तों का संग ही सबसे कल्याण श्रेय बतलाया, नहीं तो नहीं हो सकता भक्ति। हम भक्त को बात दे करके उसको नहीं रखेंगे। इसलिए हमारा सबसे कल्याण जगत में सबसे बड़ा कल्याण कैसे होगा, क्या चीज है, ऐसे भक्तों का संग ही हमारे लिए सबसे कल्याण। तो जगत में है किंतु मिलेगी कैसे, ऐसे भक्तों के। इसलिए जितने प्रकार के श्रेय हैं, कल्याण हैं, कल्याण का जो कारण है, उनमें भक्तों का संग ही, कैसे भक्तों का संग, वैसे कृष्ण भक्ति युक्त, और भक्ति में भी कैसी, रूप गोस्वामी के अनुगत हो एकांति, और वैसे भाव वाले यदि रसिक वैष्णव तत्व आदर्श चरित्र यदि ऐसे भक्त मिल जाए तो आप समझो ये कल्याण हो गया। सतांग प्रसंगम विद्य संबित भवंत रित करण रसायन कथा तद्योत्नाथ आशु अपवर्ग वस्मन सदा भक्ति एक जगह ये कहते हैं यदि किसी का संसार अब खयमुख हो रहा हो अब खय मैंने नष्ट होने को आया भाप वर्गो भ्रमित जगा तर ही सब समाप्त किसी का अब ये संसार समाप्त होने वाला है आसक्ति जाने वाली है भगवान की विशेष करना है तो उस स्थिति में साधु संघ ऐसा मिले यदि साधु संघ मिल गया तो समझो क्या अब उसका संसार समाप्त होने वाला है उसकी आसक्ति दूर होने वाली है उसका महान कल्याण होने वाला है उसके संग से संग और सब मिल गया तो ये समझे संसार खत्म हो गया जैसे किसी को चिंता मणि मिल गई तो उसकी गरीबी दूर हो गई कि नहीं अपने आप दूर हो ऐसा समझो ऐसे इसको समझो यदि भक्तों का संग हो गया तो साफ समझो कि अब हमारा कल्याण हो गया जैसे जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु और संग हो गया हरिदास ठाकुर ने क्या कहा इन दोनों का कल्याण हो गया मैं मान लिया और अब ये सात संसार रहे हो गया कल्याण ऐसे ही समझो आज जिसको संग नहीं हुआ वो समझो जी अभी इसलिए साधु संग ही कृष्ण भक्ति मूल है जन्म है साधु संग भक्ति का जन्म मूल है ऐसे संतों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए जैसे पर्समणि को चिंतामणि को हम लोग बड़ी सावधानी के साथ में रखते हैं ऐसे ही भक्तों का संग भी हमको बड़ी सावधानी के साथ कहीं भी तनिक भी कोई अवज्ञा अपराध या कोई चीज न हो जिस समय छुटने का कारण महान दुख का कारण हो जाए बड़े सौभाग्य से मिला जब मिल गया और समझो कि अब हमारा अब कल्याण हो ही गया बाकी नहीं था कहां स्मरण जीव करीबे अनुख जीव सब समय कृष्ण किसका स्मरण करे कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण भगवान के गुणों का स्मरण उनके लीलाओं का उनके नाम का स्मरण कल इसके संबंध में हम लोग बताएं आज पंच साल बोले